खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। नए अहदनामा में से करंथियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका छठा बाप। नए अहदनामा में से करंथियों के नाम पालूस रसूल का दूसरा खत, उसका छठा बाप, उसकी तीसरी आयत और चौथी आयत से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन तीसरी और चौथी आयत पढ़ेंगे और उसके बाद आगे इस पर गौर करेंगे। सो नौजवानों में से कोई पढ़ना चाहता है तो बुलंद आवाज़ से इस हिस्सा को पढ़ सकता है, तीसरी और चौथी आयत को। शुक्रिया। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है? हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हरफ ना आए, ताकि हमारी खिदमत पर हरफ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं। हमने पिछले दिनों में इस हवाले पर गौर की थी और हमने इस पर देखा था कि खुदावंद का बंदा पालूस कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी चाल चलन, अपनी बोल या अपने क्या कहते हैं कि बातचीत से किसी को कोई मौका नहीं देता, जिसमें हमने देखा था कि खुदावंद यसु मसीह का बंदा पालूस क्या कहता है कि अबलीस को मौका ना दो। हम मौका देते हैं कि कोई हमारी खिदमत पर या हमारी ज़िंदगी पर उंगली उठाए, और वो क्यों होगा? जब हम पालूस रसूल उसकी एक बड़ी लिस्ट बयान करता है, बग़ैर सब्र के अगर हम ज़िंदगी बसर करेंगे, जिसे कहते हैं कि बेसब्रे होंगे तो हमें सब्र नहीं नज़र आएगा, तो लोग क्या उठाएंगे? उंगली उठाएंगे। सो बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीजगी से, इलम से, तहम्बल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्दस से, बेरिया मोहब्बत से, ये वो तमाम बातें हैं जिसमें पालूस रसूल कहता है कि मैं इन बातों में छोटी एक लिस्ट देता है कि किसी को कोई मौका नहीं देता, कोई मौका नहीं देता, कोई वजह नहीं देता, किसी को इस बात के लिए जगह नहीं देता कि कोई ये कहे कि पालूस रसूल ऐसा है। हम ईमानदारों को भी अपनी ज़िंदगी में पालूस रसूल की इस बड़ी लिस्ट पर गौर करने की ज़रूरत है। कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाएं बाएं हैं, इज्जत दहने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकी नेकनामी के वसीला से, गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं। सो इन तमाम बातों पर अगर हम गौर करें तो हमें अपनी ज़िंदगी में भी इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम किन बातों में ईमानदार होते हुए बहुत दफ़ा क्या करते हैं, ठोकर का बाइस बनते हैं, बहुत दफ़ा लोगों को जगह देते हैं कि वो कहें कि मसीही लोग ऐसे हैं या फलां खुदा के खादम ने ऐसा किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब चकूक में जाते हैं तो बहुत से खादमों के बारे में कहा जाता है, जी मेरे पैसे लेके भाग गया, जी मुझसे उधार लिया, जी ये फलां पादरी साहब, एक हाथ में अंजील है और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर आपके घर में बीमारी है तो मैं फूचाड़ा भी करता हूं, तो क्या है? ठोकर का बाइस, ठोकर का बाइस। सो पालूस रसूल ऐसी बातों पर क्या करता है? बड़ी गौर व फिक्र करता है कि हम ईमानदारों को, आप सब और मैं क्या हैं? खुदा के खादम, हर एक दर्जे से। मेरी खिदमत है खुदा का कलाम सुनाना एक पासबान की हैसियत से। आपके लिए हुक्म है, सब के लिए ये हुक्म है। यीशु मसीह का अरशाद आज़म किसी को याद है? यीशु मसीह ने जाने से पहले, आसमान पर उठाए जाने से पहले एक हुक्म दिया था। अरशाद आज़म से मुराद यानी कि ऐसा अजीम हुक्म जो खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया के उन तमाम लोगों को दिया था जो उसकी बात सुनते हैं, अपनी सलीब उसके उठाकर पीछे होते हैं। जी,
तुम सब जाओ को बनाओ, उनको बाप और बेटे और कुदस के नाम से
मत्ती की इंजील 28वां बाप उसकी 19वीं और 20वीं आयत में ये हुक्म था, जाओ और सब कौमों को जाकर शिगिर्द बनाओ। शिगिर्द, हम शिगिर्द किसी को किस तरह बनाएंगे जब हम अपने उस्ताद के पैरोकार ना बनेंगे? सो हम सब का हुक्म क्या है? यीशु मसीह की मनादी करना। वहाँ पर खासल खास शिगिर्दों को ये हुक्म दिया गया था, जाने से पहले, आसमान पर उठाए जाने से पहले यीशु मसीह ने कहा, जाओ और जाकर मेरे नाम की मनादी करो। आज वो हुक्म हम सब के लिए भी क्या है? जारी है। क्योंकि बहुत दफ़ा हम हुक्मों में चुनाव करते हैं कि ये हुक्म उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है, जो कि बहुत दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर इब्राहिम को हुक्म दिया था कि अपने बेटे को ले और जो जगह मैं तुझे बताऊंगा वहां पर जाके उसे क्या कर दे? मेरे लिए कुर्बान कर दे। ऐसे हुक्म से हमें ग्रेज करने की जरूरत है कि ये ना हो कि कहें कि खुदा ने इब्राहिम से कहा है और वहां पर कहें कि खुदा ने फैसल से कहा है कि जाकर ये कर दे। ऐसे हुक्मों से हमें ग्रेज करने की ज़रूरत है क्योंकि वो हुक्म खासल खास सिर्फ इब्राहिम ही के लिए था कि जा, मैं तुझे बेटा दूंगा, तेरा पलोठा होगा और उसके बाद जाकर उसे कुर्बान कर दे। सो छोटी छोटी बातें हैं जो हम मसीही ज़िंदगी में बहुत दफ़ा करते हैं, हमारा बोलना, हमारी ज़िंदगी का चाल चलन। मुझे बहुत दफ़ा घुटन महसूस होती है जब कोई शुरू हो जाता है लंबे लंबे किस्से के, फलान ने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया, और वो बंदा अपनी बातों से अपने आप को पाक और अगले को क्या करता है? मुजरम ठहराता है। सो इसलिए हमें ठोकर का बायस नहीं बनना। आए मेरे साथ देखे चंद एक हवाला जात, आज हम इस मजमून पर थोड़ी सी गौर करेंगे। रोमियो 14 बाप उसकी 13 आयत, रोमियो 14 बाप उसकी 13 आयत। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल मजबूत और कमज़ोर ईमानदारों के बारे में, और या कह सकते हैं कि जो ज़्यादा समझदारी से ज़िंदगी गुजारते हैं या मसीह के साथ उनका नया नया तलक है, जिसे कह सकते हैं कि नौमरीद या मचोर मुरीद, यानी कि नौमरी से मुराद नया नया ईमानदार मच्योर मरीज से, यानी कि उसने काफ़ी देर से इस बात पर ईमान रखा कि यीशु मसीह उसके लिए कौन है। सो 14वां बाप उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? पस आइंदा को हम एक दूसरे पर अल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज़ ना रखे जो उसके ठोकर खाने का या गिर जाने का बाइस हो। पालूस रसूल कहता है कि अब से हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। इल्ज़ाम से मुराद कि जी उसने ये किया इसलिए मैंने ये किया, मेरी बीवी ने ये कहा इसलिए मैंने ये किया, मेरे अबू ने ये किया और इसलिए मैंने किया। सो ईमानदारों को वो कहता है कि हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना कि वो कमज़ोर है और मैं मजबूत हूँ इसलिए मैं ये कर सकता हूँ। सो हमें एक दूसरे को इस बात में ये क्या करना है, अल्ज़ामदार नहीं ठहराना, बल्कि इससे जो सीखने की बात है, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज़ ना रखे। वो चीज़ ना रखे, वो चीज़ कौन सी हो सकती है? हो सकता है गंदी गुफ्तगू। बहुत दफ़ा गंदी गुफ्तगू करते हैं नौजवान एक दूसरे के सामने कि यार ये बात वो बात वो बात, जिसमें चुगली हो सकती है, जिसमें ऐबजोई हो सकती है, जिसमें किसी को नीचा करना हो सकता है, या फिर गंदी बातें जिसमें गालियाँ। तो अगर हम गालियाँ निकालेंगे तो दूसरे के लिए, अगर ये निकाल सकता है तो मैं भी निकाल सकता हूँ। सो वो चीज़ गालियाँ हो सकती हैं, वो चीज़ खाना पीना हो सकता है, वो चीज़ ज़िंदगी का रवैया हो सकता है जो उसके ठोकर खाने या गिर जाने का बायस हो। बहुत दफा देखो देखी करते हैं ना, जैसे कि यार इसने ये काम किया है मैं भी करूंगा, तो वो चीज दूसरे के लिए ठोकर का बायस ना बनाएं जिससे किसी दूसरे भाई का नुकसान हो सकता है। और उसमें वो चीज में आप गिन सकते हैं कि वो कौन सी चीज है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके लिए सोचूं, आपको अपने लिए सोचना होगा। मैं आपके लिए फैसला नहीं कर सकता, आपको अपने लिए फैसला करना होगा। फिर आगे यही खाने पीने की बात यहां पर चल रही है। 20वीं आयत को देखते हैं, हर चीज पाक तो है मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है। हर चीज पाक है, पालूस कहता है, हर चीज पाक तो है मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है, और उसका नतीजा क्या निकालता है, यही अच्छा है कि ना तो गोश्त खा, ना मैं पी, ना और कुछ ऐसा करे जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए। बल्कि क्या लिखा है, जो तेरा एतकाद है वो खुदा की नजर में तेरे ही दिल में रहे, मबारिक है वो जो उस चीज के सबब से जिसे वो जायज रखता है अपने आप को मुलजम नहीं ठहराता। मिसाल के तौर पर मैं दुनिया में दो रिवाजों में जिंदगी बसर करता हूं, 5 से 4 महीने पाकिस्तान में, 6 से 7 महीने अमेरिका में। सो जब वहाँ पर मैं जाता हूँ तो वहाँ से मुराद यानी कि उनका रीति रिवाज हो, वो तरीक़ाकार है, वहाँ पर मैं जाता हूँ, लेकिन बहुत से तरीक़ेकार जो हैं मैं उनके इस्तेमाल नहीं करता। मिसाल के तौर पर बाहर के मुल्क में शराब क्या है, आम है, दुकानों पर है और वो कानूनी है, 20 साल से ऊपर का जो भी बच्चा बालग है वो उसे पी सकता है, और उसे पीने की जगह और पीने का वक्त क्या है, खुद तयन करना होगा। सो अगर मैं वहाँ पर जाकर कहूँ कि हाँ जी मैं तो 20 से ऊपर का हूँ और जाकर खूब शराब पीऊँ क्योंकि सस्ती है, तो क्या बना, आपको आकर यहाँ पर कहूँ कि मैंने फलां फलां किस्म की शराब पी थी और वो बड़ी मज़ेदार थी और मैंने उल्टियाँ की, तो आपके लिए मैं क्या बना, ठोकर का बाइस। और अगर मैं यहाँ पर आकर वही काम, मिसाल के तौर पर जैसे बहुत दफ़ा कहते हैं कि पादरी साहब आप अपने रंगों में ये फुलझड़ियाँ नहीं लगाते हैं आपके बालों में, कि आपके रंग बिरंगे बाल हो, आपके कानों में इतने इतने मुंदरे पाए हों और आप अमरीकी फैशन करें, आप क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए ठोकर का बायस बनूं। सो हम अपने खाने पीने से, पहनावे से या अपने तरीक़ाकार से क्या बन सकते हैं, ठोकर का बायस बन सकते हैं। मेरे साथ एक और हवाला निकाले, 1 करिन्थियों 8 बाब उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर भी पालूस रसूल खाने पीने की बात ही कर रहा है कि हमारा खाना पीना क्या हो सकता है, किसी के लिए ठोकर का बायस हो सकता है। कि हमारे मुल्क में जिसे कहते हैं कि बारदा, जिसे कहते हैं कि सूअर का गोश्त, यहाँ पर कोई भी नहीं खाता, अगर खाते हैं तो चोरी छुपे खाते हैं। उस मुल्क में क्या है, आम है, दुकानों पर बिकता है, लोगों ने घरों में रखे हुए हैं। तो अगर मैं कहूं कि जी मैं भी जाऊंगा और वहां से एक सूअर यहां पर ले आऊं, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये नापाक बंदा है। क्यों? क्योंकि यहां पर मुनासिब नहीं, लेकिन वहां पर लोगों ने अपने घरों में जैसे पालतू होते हैं, जैसे बिल्ली कुत्ते हैं, वैसे रखे हुए हैं। सो पालूस रसूल क्या कहता है, खाने पीने के लिहाज से उसकी नामी आयत, पहला करंथियों 8 बाब उसकी नामी आयत, लेकिन होशियार रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। हमें कमज़ोरों के लिए अपनी आज़ादी को बेफायदा इस्तेमाल नहीं करना। सो इसलिए हमें बड़े एहतियात के साथ क्या करनी है, ज़िंदगी बसर करनी है। खुदावंद यसु मसीह फरमाता है, मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब। यहाँ पर खुदावंद यसु मसीह ने यूहन्ना के भेजे हुए तमाम लोगों को जो पूछने आए कि क्या तू वही है, गालबन ये बात हो रही है। जब हम 11वें बाब की पहली 6 आयात को पढ़ते हैं, 5 याद को पढ़ते हैं, तो यसु मसीह के 12 शिगिर्दों को यसु ने हुक्म दिया और वो शहर शहर तालीम देते और मनादी करते थे। और यूहन्ना कैद खाना में था और मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शिगिर्दों की मार्फत ये पूछने को भेजता है कि क्या आने वाला तू ही है या फिर हम किसी दूसरे का इंतज़ार करें। यसु ने जवाब में उससे कहा, उनसे जो आए थे उनसे कहा और उनको बताया जो तुम देखते हो सुनते हो और जो कुछ हो रहा है उससे तुम्हें क्या अंदाज़ा है। सो ये सारी बैकग्राउंड है कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और फिर मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। सो ये पहली पाँच आयात ये सारी बातचीत करती हैं। यसु मसीह के शिगिर्द तालीम दे रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, शिगिर्द बढ़ रहे हैं और यूहन्ना सच बोलने के वसीला से कहाँ पर है, कैदखाना में। ये यूहन्ना अस्तबागी जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, वो कैदखाना में है क्योंकि उसने हेरोदीस की ऊपर ये गवाही दी, मलामत की कि तू अपने भाई को जो फौत हो गया है उसकी बीवी को अपनी बीवी बना के रखता है, जिसे कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में तूने उसे रखा हुआ है रखेल के तौर पर। तो पालूस, तो यूहन्ना ने जब ये सच बोला तो वो क्या हुआ, उस बादशाह को, उस बंदे को जो हेरोदियास की बीवी का खामद बना हुआ था, उसे गुस्सा आया। सो ये सारी बातें बातचीत चल रही है और यूहन्ना इसी वजह से जेल खाना में है। तो 6 आयत में खुदावंद यसु मसीह ने क्या कहा, और मुबारक हैं वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाएं। बहुत से लोगों ने बनी इसराइल कौम में यसु मसीह के वसीला से ठोकर खाई, क्यों? खुदा ने उसे भेजा लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया, तो क्या हुआ, ठोकर उनको लगी कि तुमने खुदा के मसीह को कबूल ना किया। आज भी बहुत से लोग मौजज़ात देखते हैं, काम देखते हैं, अजीब अजीब उसके नाम से, लेकिन उसे कबूल नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, ठोकर खाते हैं। सो हमें बहुत से हवाला जात हैं जो हम देख सकते हैं, इसलिए हमें ईमानदारों को ठोकर का बायस नहीं बनना, ना खाने पीने में, ना पहनावे में, ना अपनी आज़ादी को गलत तौर पर इस्तेमाल करने में। तो हम ईमानदारों के लिए ये बात है कि हम भी पालूस की तरह कहें कि हम किसी बात में किसी को कोई मौका नहीं देते, खा हम खादम हैं, खा हम स्टूडेंट जिसे कहते के पढ़ने वाले हैं, बाइबल के सुनने वाले हैं, ईमानदार हैं, कलीसिया हैं, हम किसी बात में किसी को ठोकर का बायस ना बनने दें। इसलिए मसीही ज़िंदगी बहुत मुश्किल है जब इंसान उसे अपने ज़ोर से गुजारना चाहता है, और मसीही ज़िंदगी बहुत आसान है जब इंसान उसे रूहुल कुद्दस के ज़ोर में बसर करता है। इंसान अपने ज़ोर से बहुत कुछ करना चाहता है, नाकाम होता है। जिसके बारे में ब्रिपादी साहब जो जिनसे मैं सीखता हूँ, वो कहते हैं कि इंसान किसी मुश्किल को दूर करने के लिए एक हल निकालता है और उस एक हल में 10 मसले पैदा होते हैं। इंसान एक मुश्किल को दूर करने के लिए 10 मसलों को पैदा करता है, खुदा एक मसले को दूर करता है तो उसके 10 हल निकलते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में हमें अपने ज़ोर में नहीं बल्कि मसीह के ज़ोर में ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए कोई जल्दी से इस आयत को निकाले, गलतियों 5 बाप उसकी गालबन 24वीं आयत है ये, गलतियों 5 बाप उसकी 24वीं आयत। गालबन हो सकता है कि 24 ही मी हो। हाँ जी, 25वीं आयत, 24 में से पढ़ लेते हैं जी। और जो मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए।